13 सत्य निर्णय के सहयोगी प्रयास में। यह समझने में लोग असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं कि एक शिल्पहीन कहानी की भावुकता एक निश्चित जीवन दृष्टि का परिणाम है। क्या कहानी का यह निष्कर्ष फिर याद दिलाना होगा कि यह दुनिया अब तुम्हारे जैसे सात पुरुषों के योग्य नहीं रही, यहाँ पापिष्ट ही पनप सकते हैं। क्या इस वक्तव्य से घोर निराश जीवन और सनकीपना सिनिसिज्म प्रकट नहीं होता? क्या यह निराशा जीवन और जगत के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण का सूचक नहीं है? क्या ऐसे वक्तव्य वही नहीं देते जो अपने दुख का कारण समझने में असमर्थ होते हैं, यहाँ तक कि समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते? अपनी धारणा को पुष्ट करने के लिए ऐसे लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इतने बड़े त्याग के बाद भी उनकी धारणा सत्य साबित नहीं होती। यह भावुकता नहीं तो और क्या है? इतना दुख भोगने, इतना खोने के बाद भी उनके हाथ कोई तथ्य नहीं आता। परसाई के शब्दों में, हजारों खोकर वे क्या दो कौड़ी की बात सीखते हैं। इस पर भी यदि एक शिल्पहीन कहानी किसी को अच्छी लगती है तो कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं वह भी इस जीवन दर्शन का शिकार है और इससे उसके मन में बैठी हुई उसी धारणा को खुराक मिलती है। इस कहानी में भावुकता की कमजोरी को स्वीकार करते हुए भी जो लोग कहानी की थीम में कमजोरी नहीं देखते और उल्टे उसे स्वस्थ समझते हैं, उनकी कहानी संबंधी समझ को क्या कहा जाए? क्या इस समझ पर भी भावुकता का पर्दा नहीं है? क्या यह दृष्टि भी धुंधली नहीं है? अधिकांश लेखकों का कहना है कि एक शिल्पहीन कहानी केवल एक की कहानी नहीं है, इसमें क्या शक? एक साथ इतने लेखकों के कहने से ही जाहिर है कि यह एक कहानी नहीं है, यह दुनिया रहने लायक नहीं रही। कहने वाले निस्संदेह आज भी काफी मिलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये बहुत सारे लोग इस समस्या को सबकी या बहुतों की सामाजिक समस्या समझते हैं या अपनी अपनी। यदि वे इसे सामूहिक समस्या समझते हैं तो अकेले अकेले दुनिया छोड़कर न चल देते। ऐसे व्यक्तियों की कहानी पढ़ने के बाद दुख तो हमें होता है, किंतु कोई समस्या सामने नहीं आती। पाठक आंसू बहाकर ही संतोष कर लेते हैं, आखिर करें भी क्या? सोचने के लिए कोई समस्या नहीं आती, आई तो फिर अपने काम लगे। यदि संयोग से लेखक ने उस कहानी को सुखांत बना दिया तो यह सोचकर संतोष किया कि चलो अच्छा हुआ, जैसे उनका सपाट उनका राजपाट वैसे सबका लौटे। हर हालत में कहानी एक की ही होकर रह जाती है, चाहे मन में यह भाव भले ही हो कि ऐसे एक अनेक हैं। कहानी को व्यापकता तब मिलती है जब एक व्यक्ति की अनुभूति को समस्या के रूप में उपस्थित किया जाता है और समस्या को वस्तुगत सामाजिक कारण बताया जाता है, चाहे यह कारण नितांत सांकेतिक ही क्यों न हो। एक शिल्पहीन कहानी में ससुर के दुख का कारण क्या बताया गया है? बहू का स्वभाव। बहू का स्वभाव ऐसा क्यों है कि वह अपने ससुर को सताती है? कहानी में इसका कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण नहीं दिया गया है। और स्वभाव का हाल यह है कि किसी बहू को का अच्छा है तो किसी का बुरा, इसका कारण क्या हो सकता है? और जो अकारण है उसे बदलने का क्या उपाय? या तो वह व्यक्ति स्वयं बदले या फिर भगवान ही बदल दे तो बदल दें। वैसे है यह सब कुछ भाग्य के ही साथ। आकस्मिक नहीं है कि कहानी के अंत में भगवान को गदलस स्वभाव से पुकारा गया है। इस तरह है सब कुछ एक ही साथ, चाहे वह भगवान हो या भाग्य या वह व्यक्ति स्वयं। ऐसी सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति के सामने जाहिर है कि हर कोई निरुपाय है। यहाँ तक कि उससे इलाज की भी मांग नहीं की जा सकती। अधिक से अधिक उससे इतनी दया की भीख मांगी जा सकती है कि उस व्यक्ति के दुख हमें दे दे या फिर उसके साथ ही हमें भी उठा ले। कहानी के अंतिम विलाप में यही भाव व्यक्त किया गया है। एक शिल्पहीन कहानी इसी अर्थ में एक की कहानी है और इसी अर्थ में उसके दुख का कारण बाहरी है कि बहू का स्वभाव भाग्य और भगवान की तरह ही सामाजिक परिस्थिति के प्रभाव से बाहर है, सामाजिक नियमों से एकदम परे मनोवैज्ञानिक नियमों की तर्क श्रृंखला से सर्वथा मुक्त और अस्पृश्य। इस जीवन दृष्टि से उत्पन्न होने वाली विवस्था कितनी असामाजिक और समाज विरोधी है, इसे भी क्या विस्तार से समझने की आवश्यकता है।